ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्ध दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मा मनभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 4 श्लोक 29। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यत् यत् निरुक्तम् यदयन्निरुक्तम् वचसा निरूपितम् धिया अक्षभिः वा मनसः मनसा उत यस्य मा भूत स्वरूपं गुणरूपं हे तत् तत् सह वै गुण अपाय विसर्ग लक्षणः। यदयन् निरुक्तं वचसा निरूपितम् धियाक्षिभिर्वा मनसोत्तजस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत् स सभै गुणापाय विसर्ग लक्षण यत यत जो भी निरुक्तम कथित वचसा शब्दों से निरूपितम सुनिश्चित धिया तथा कथित ध्यान या बुद्धि से अक्ष भी इंद्रियों से वा अथवा मनसा मन से उत निश्चय ही यस्य जिसका माभूत नहीं हो सकता स्वरूपम भगवान का वास्तविक रूप गुण रूपम तीनों गुणों से युक्त ही निसंदेह तत्त वह सह वह भगवान वही निसंदेह गुण अपाय तीन गुणों से बनी हुई हर वस्तु के संहार का कारण विसर्ग तथा सृष्टि लक्षण के रूप में प्रकट अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद भौतिक ध्वनियों द्वारा व्यक्त भौतिक बुद्धि द्वारा सुनिश्चित तथा भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव की गई अथवा भौतिक मन के भीतर गढ़ी गई कोई भी वस्तु भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं होती। इसलिए भगवान के असली स्वभाव से उसका किसी तरह का संबंध नहीं होता। परमेश्वर इस भौतिक जगत के सृष्टि के परे हैं, क्योंकि भौतिक गुणों तथा सृष्टि के स्रोत हैं। सभी कारणों के कारण होते हुए वे सृष्टि के पूर्व तथा सृष्टि के पश्चात विद्यमान रहते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। तात्पर्य, जो भगवान से संबंध नामों रूपों गुणों या साज सामग्री को गढ़ता है वह उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि से परे हैं। भगवान हर वस्तु के सृष्टा हैं, जिसका अर्थ है कि वे सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। दूसरे शब्दों में उनका नाम रूप तथा गुण भौतिक रूप से उत्पन्न जीव नहीं है, सदैव दिव्य रहते हैं। अतः अपने भौतिक मनोरथों ध्वनियों तथा विचारों से हम भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राही मिंद्रिय श्लोक में हुई है। यहाँ पर प्राचेतस दक्ष ब्रह्म की स्तुति कर रहे हैं, भौतिक सृष्टि के भीतर किसी व्यक्ति की नहीं। एकमात्र मूर्ख तथा धूर्त ईश्वर को भौतिक सृष्टि समझते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पुरुष से ज्ञान प्राप्त करें जिसके समक्ष भगवान प्रकट हो चुके हों। भगवान के लिए काल्पनिक नाम या रूप निर्मित करने का महत्व नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य निर्विशेषवादी थे, किंतु तो भी उन्होंने कहा नारायण परो व्यक्तात्। नारायण या भगवान इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं है। हम नारायण को भौतिक उपाधि नहीं प्रदान कर सकते। जैसा कि मूर्ख लोग दरिद्र नारायण की बात करते समय प्रयास करते, नारायण सदैव दिव्य हैं, इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। वे दरिद्र नारायण कैसे हो सकते हैं? दरिद्रता इस जगत में पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में दरिद्रता जैसी कोई वस्तु नहीं है। अतएव दरिद्र नारायण का विचार कोरी मनोकल्पना है। दक्ष बहुत ही सावधानी से इंगित करते हैं कि भौतिक उपाधियां पूज्य भगवान के नाम नहीं हो सकती। यद्यन निरुक्तम वचसा निरुक्तम, निरुक्त द्योतक है वैदिक कोश का। कोई व्यक्ति किसी शब्द कोश की अभिव्यक्तियों को चुनने मात्र से भगवान को ठीक से नहीं समझ सकता। भगवान की स्तुति करते समय दक्ष अपनी पूजा के लिए भौतिक नामों तथा रूपों को विषय वस्तु नहीं बनाना चाहते, प्रत्येक वे भगवान की पूजा करना चाहते हैं जो भौतिक कोशों या नामों की सृष्टि के पहले विद्यमान थे, जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, भगवान के नाम रूप गुण तथा साज सामग्री को भौतिक कोश द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझने के दिव्य पद तक पहुंच जाता है तो वह प्रत्येक वस्तु से, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, भली भांति परिचित हो लेता है। इसकी पुष्टि एक दूसरे मंत्र में हुई है, तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति। यदि कोई व्यक्ति भगवान के कृपा से किसी तरह भगवान की दिव्य स्थिति को समझ सकता है तो शाश्वत बन जाता है। इसके और आगे पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 4:9 में की है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शौर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान को केवल समझ लेने से मनुष्य जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से परे चला जाता। इसीलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत 2:1-5 में सलाह दी है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे राजा भरत के वंशज, जो व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होना चाहता है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण भी करना चाहिए। जो परमात्मा नियंता समस्त कष्टों से बचाने वाले हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हंस गुह स्तुति चल रहा है। इस स्तुति को बोल रहे हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष का परिचय दिया गया है प्राचेतस। दक्ष कौन है? प्रचेताओं के पुत्र हैं। क्यों ऐसा परिचय दिया जा रहा है? क्योंकि पहले दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत काबिल बेटा थे, इसलिए प्रजापतियों का पति उनको बना दिए। लेकिन पद मिल गया, उनका घमंड बढ़ गया, जन्म ही अच्छा था और पद से और घमंड बढ़ गया। अब इतना घमंड बढ़ गया कि शिव जी जैसे भक्त का भी अपमान किया। भक्त लोग तो अपमान अपना सह लेते हैं, वे कुछ प्रतिकार नहीं करते हैं। उनको तो तुल्यार्थ दर्शिना, बस उनकी तो दृष्टि है कि भगवान की भक्ति करनी है। अरे कोई मान अपमान में तो समान होते हैं, लेकिन भक्तों का अपमान करने पर भगवान नहीं सहते हैं। भगवान तो कुछ न कुछ दंड देते ही हैं। तो शिव जी के अपमान का प्रभाव हुआ, दक्ष ब्राह्मण कुल से क्षत्रिय कुल में आ गए। उनका जन्म प्रचेताओं के वीर्य से हुआ। प्रचेता क्षत्रिय हैं, प्राचीन बरही के पुत्र हैं। आप प्रचेताओं की कथा कुछ दिन पहले सुन चुके हैं। प्रचेता अंतर उदधौ, समुद्र के अंदर प्रवेश करके आकंठ जल में खड़ा हो करके और रुद्र गीत का जप किए, 10,000 वर्ष तक जप किए। उसका परिणाम हुआ कि भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके वे बहुत संतुष्ट हुए, आनंद के मारे उनके आँखों से अश्रु गिरने लगे। वे भगवान का रूप देख रहे थे खड़ा हो करके, लेकिन भगवान उनको कहे कि हम तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, तुम लोग तपस्या किए हो, मेरी आराधना किए हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और खास करके तुम भाइयों में बहुत प्रेम है, पर इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और संतुष्टि के मारे, आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन, भगवान उनको वरदान देने लगे। वे चुपचाप खड़े हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति तुम लोगों का स्मरण करेगा वो भाइयों में प्रेम बढ़ेगा। और फिर कह रहे हैं कि तुम लोगों को ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो ब्रह्मा से कम नहीं होगा, गुणों में ब्रह्मा से कम नहीं होगा। अब तो प्रचेता लोग झेप गए, अभी विवाह हुआ नहीं और भगवान कह रहे हैं कि पुत्र उत्पन्न होगा, फिर भी वे चुप थे। भगवान कहे कि कंडो प्रमलोचया जाता, कंडो ऋषि और प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न एक लड़की है, कमल लोचना, बहुत सुंदर लड़की है, और तुम लोग उसको पत्नी के रूप में स्वीकार करना। चूंकि तुम दसों भाई का सील स्वभाव एक जैसा है, रंग रूप एक जैसा है, नाम एक है, तो दसों भाई के लिए पत्नी भी एक होगी और नरपितात्मा वे दसों के प्रति समर्पित होगी, तुम लोग उसको स्वीकार करना। अब भगवान का दर्शन करके उनसे और वर मांग करके, ये तो भगवान ये सब वर अपने से दे दिए, इसके बाद कहे कि वर मांगो वर मांगो, तो स्तुति किए और कहे कि अब क्या वर मांगे, आपका दर्शन कर रहे हैं तो अब इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है कि हम वर मांगे। उदाहरण दे रहे हैं कि पारिजातेन जसा लब्ध है, अरे जो भौंरा है उसको पारिजात वृक्ष का पुष्प मिल जाए तो दूसरे वृक्ष का सेवन क्यों करेगा, तो आपका हम लोग दर्शन कर रहे हैं तो अब हम वर क्या मांगे। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो हम लोग यही वर मांग रहे हैं कि हम लोग किसी भी योनि में जाएं, कहीं भी हमारा जन्म हो, आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे, आप में जो आसक्त हैं ऐसे भक्तों में हमारी आसक्ति हो। और भगवान भी अंतर्हित हो गए। प्रचेता लोग जल से बाहर आए, बाहर आए तो देखे कि सब जगह ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, पूरा समुद्र के किनारे जो भी भूतल है, पृथ्वी है, तो सब पर वृक्ष उगे हुए हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। तब इसको देख करके प्रचेताओं को बहुत क्रोध आया। वृक्ष को देख करके क्रोधित क्यों हो गए, तो उनके मन में भावना आने लगी कि ये देखो वृक्षों का कि हमारे पिता के भूमि पर कब्जा कर लिए, और हमारे पिता स्वर्ग गए होंगे, स्वर्ग गए हैं तो अब उधर ऊपर जा रहे हैं, मानो स्वर्ग में जो स्थान उनको है उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। उनको बहुत क्रोध आया है। तपोदीपित मन्यव, तपस्या किए थे, बहुत दिन से भोजन का त्याग किए थे, तो इनको बहुत क्रोध आया क्योंकि भोजन का त्याग करने पर क्रोध आता है। भूख और क्रोध का अधिष्ठान एक है, जब भूख उद्दीप्त रहता है तो क्रोध ज्यादा होता है, ये देखा गया है व्यवहार में भी। तो इतने कुपित हुए वृक्षों पर कि मुंह से ही भी आग और हवा उत्सर्जित कर दिए, कहीं से आग लाना नहीं पड़ा, मुख से ही तपस्या का बल था और हवा का सारथी कहा जाता है, आग का सारथी हवा को कहा जाता है, तो हवा भी अब वृक्ष जलने लगे। उस वृक्षों के राजा हैं चंद्रमा जी आकर के समझाने लगे कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रजा के वृद्धि करने का संकल्प है और वृक्षों को आप जला रहे हैं। अरे वृक्ष तो प्रजा के पालन पोषण में सहायक हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, औषधि देते हैं, वृक्ष तो सब तरह से प्रजा के सहायक हैं, ये ठीक आप लोगों का कार्य नहीं है, आपके संकल्प के अनुरूप नहीं है, और आप अपने पिता पितामह के तरफ ध्यान दीजिए, तो ऐसा वे कभी नहीं किया। मैं मानता हूं कि आप लोगों को क्रोध आ गया, लेकिन जो व्यक्ति अपने आए हुए क्रोध को भी समित कर लेता है तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग क्रोध शांत कीजिए। और तो कई एक वृक्ष तो जर गए थे, जो वृक्ष बचे थे वे तो बहुत भयभीत थे और ला करके कन्या को प्रदान किए। वार्क्षी जन्म तो उस लड़की का हुआ था कंडू और प्रमलोचा से। कंडू एक ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे, अब उनके तपस्या को देख करके इंद्र को शंका हो गया कि यदि इसकी तपस्या सिद्ध होती है तो हमारे पद का दावेदार बन सकता है, इससे पहले ही इसकी तपस्या ही भंग कर दी जाए। तो स्वर्ग से एक अप्सरा को भेज दिए, प्रमलोचा को, कि तुम लोग जा करके इसके तपस्या को खंडित करो। प्रमलोचा आई, अपने स्त्रियोचित हाव भाव से ऋषि का मन आकृष्ट कर लिया, ऋषि उसका संग किए, प्रमलोचा गर्भवती हुई और सद्य थोड़े ही समय बाद वो प्रसव की, लड़की का जन्म दी और स्वर्ग चली गई। वो तो ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए आई थी, उसका काम पूरा हुआ और चली गई। अरे भी वो तो भेजे हुई थी, ऋषि तो पुत्री को जन्म दिए हैं, लेकिन ऋषि भी उस स्थान को छोड़ करके चले गए। अभी प्रश्न होगा कि ऋषि क्यों चले गए, तो इसके विषय में दो चीजें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि अब ऋषि बड़ा प्रतिष्ठित थे तो अपने प्रतिष्ठा के हनन से, इस भय से कि अब हमारी बहुत बदनामी होगी, वे चले गए, लेकिन यह कारण उतना ठीक नहीं लगता। ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में कि ऋषि ज्योतिष के जानकार थे, ज्ञानी थे, और वे कैलकुलेशन से देख लिए, लड़की के ललाट के रेखा को पढ़ लिए कि मरण जोग है, तो मरण जोग भी आत, मरण जोग के भय से उस स्थान को छोड़ दिए। मरण जोग का अर्थ यह है कि ऋषि देख लिए कि यदि पिता इसके साथ रहता है, लड़की पिता के साथ रहती है, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति अपने संतान का मृत्यु नहीं चाहता, तो इसलिए ऋषि उस स्थान को छोड़ दिए, वहां से अलग हो गए कि लड़की कम से कम जीवित रहे। देखिए कोई माता पिता है तो बहुत उनको स्नेह होता है अपने पुत्र से, उसको मारना नहीं चाहते। एक बार की घटना है कि यहीं आगरा में विवाद हो गया, एक बच्चे के लिए दो स्त्रियों में विवाद हो गया। दो स्त्री क्लेम कर रहे थे कि मेरा पुत्र है। अब राजा के पास केस चला गया। अब राजा इस केस को बीरबल के यहाँ दे दिए कि आप इसको निपटाइए, किसका पुत्र है। बीरबल कहे कि ठीक है, तुम लोग कल आओ। दरबार लगाए और पूछे किसका पुत्र है। दोनों स्त्री कहने लगी कि हमारा पुत्र है। तब बीरबल कहे कि ठीक है, दोनों तो तर्क दे रही हो, हम दोनों से संतुष्ट हैं, तो ऐसा करते हैं कि बच्चे को आधा आधा काट देते हैं, ले लो। तब एक स्त्री कहते हैं कि ना, काटिए मत, उसको दे दीजिए, उसको काटिए मत, हमारा पुत्र नहीं है, उसी को दे दीजिए। तब बीरबल समझ गए कि वास्तव में पुत्र किसका है और उसको दे दिए। और जिस स्त्री का पुत्र था तो यह इस विचार पर आ गई कि ना, पुत्र सुरक्षित रहे, भले हमारे पास न रहे। तो कंडू ऋषि के विषय में भी ऐसा ही कहा जाता है कि मरण जोग भी आ, देख लिए कि मरण जोग है, पुत्री के साथ रहने से पुत्री का देहांत हो जाएगा, इसलिए अलग हो गए। अरे अब वो अलग हो गए लेकिन प्रकृति के अनुसार बच्चे को तो भूख लगेगी, वो बच्ची रोने लगी। अब दयान्वित उसे प्रभावित होकर के दया की भावना से चंद्रमा आ करके उसके मुख में उंगली डाले। वो चंद्रमा में अमृत है, तो एक तरह से उस बच्ची को प्रथम भोजन अमृत मिला, उसका प्रभाव तो आएगा ही। और वृक्षों ने पालन किया तो एकदम खुले पर्यावरण में प्रकृति के गोद में पालन हुआ, भोजन अमृत है, तो स्वाभाविक है कि रूप में निखार आएगा। तो लड़की बहुत सुंदर थी, कमल लोचना। वो प्रचेता लोग वृक्षों को जरा रहे थे, जो वृक्ष बचे थे तो भयभीत हो करके और उस लड़की को लाए। चंद्रमा जी कहे कि इसको आप लोग ग्रहण कीजिए। वो भगवान कहे ही थे, प्रचेता लोग उसको ग्रहण किए, कालांतर में उससे पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी का नाम दक्ष हुआ। इसी से यहाँ प्राचेतस दक्ष, प्राचेतस ऐसे कई एक बार शब्द आया है। इनकी भी जिम्मेवारी थी प्रजा का विस्तार करना, क्योंकि ये प्रजापति के कुल में जन्म लिए हैं। तो पहले वे मन से सृष्टि करने लगे, कई एक प्रकार के सृष्टि किए, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। जितना विस्तार चाह रहे थे तो उतना विस्तार हो नहीं रहा था, तो इसलिए वे तपस्या में लग गए। नारायण सरोवर पर जा करके, पवित्र क्षेत्र है, और वे विंध्य पादन उपव्रज, विंध्य पर्वत के तलहटी में जा करके और तपस्या करने लगे। तपस्या में मुख्य चीज था कि वे हंस गुह्य स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। हंस गुह्य स्तोत्र, थोड़ा शब्द पर विचार कीजिए। हंस गुह्य, हंस कहते हैं जिनको क्षीर नीर का विवेक है, तो जड़ चेतन को जो समझते हैं उनको हंस कहते हैं या परमहंस कहते हैं। जिनको आत्मा जड़, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, जड़ और चेतन का ज्ञान है, भगवान और संसार का ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्तियों को हंस कहा जाएगा। तो यह स्तोत्र उन्हीं के बीच में, पब्लिक स्तोत्र नहीं है, जो ज्ञानी हैं वही लोग इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। क्योंकि स्तोत्र को आप सुनेंगे, सुन रहे हैं, तो समझ में आएगा कि कितना इसमें विरोधी विरोधी बात है। साधारण आदमी इसको नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा, पर इसको इसी से हंस गुह्य स्तोत्र कहते हैं। और कश्यप जी बहुत दिन, नहीं दक्ष बहुत दिन तक तपस्या किया। वास्तव में अच्छे रिजल्ट के लिए, बहुत बड़े उपलब्धि के लिए तपस्या करना होता है। अब विडंबना यह है कि 40 साल 50 साल के तपस्या को लोग भी बड़ा तपस्या समझ रहे हैं। हम पूना में थे तो एक भक्त ऐसे अपना विचार दे रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पाया, एकदम हमको निकलना था कि ब्रह्मचारी लाइफ थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसको टॉलरेट करना कठिन होता है। अब वहाँ तो मैं नहीं बोल पाया, अरे इसको बृहद व्रत कहा ही जाता है। अब उनका विचार चले तो रिजोल्यूशन पास कर देंगे कि ना आजीवन ब्रह्मचर्य इम्प्रैक्टिकल है। अब हम वहाँ तो नहीं बोल पाए, हमको निकलना था, लेकिन ये ब्रह्मचर्य व्रत को बृहद व्रत कहा जाता है, ये लंबे समय तक होता ही है। और देखिए, जब कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना है तो तपस्या करना होता है। ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तपस्या किए, 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। किस लिए? कि नंदा ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु उपलब्ध है। ब्रह्मा जी के मन में यह इच्छा थी कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो, तो इसके लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। 60,000 वर्ष तक तपस्या के रिजल्ट कुछ नहीं, लेकिन निराश नहीं हुए, फिर तपस्या में लगे। फिर तपस्या में लगे तो भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और उनको वर दिए कि तुम बरसाना में पर्वत हो जाओ। तो वे चाहते थे कि गोपियों का चरण धूलि मिले, लेकिन तपस्या का परिणाम, भगवान के प्रसन्नता का फल ऐसा हुआ कि साक्षात गोपियों का स्पर्श मिलता है। वो दक्ष तपस्या में लगे, एक दो वर्ष नहीं, कई एक मनवंतर तक तपस्या में रहे। बिंध पादान उपव्रज, ये बिंध पादान बहुवचन में दिया गया है। एक जगह जा करके तपस्या में लगे, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, लेकिन कोई सिद्धि ही नहीं, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुए। फिर दूसरे स्थान पर फिर स्तोत्र पाठ कर रहे, मैं समझता हूँ कि 5 मनवंतर तक ये पाठ करते रहे। एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी होता है, 71 चतुर्युगी। और जब स्तोत्र का पाठ कर रहे थे तो इनके पाठ करने से भगवान प्रसन्न होकर के इनको दर्शन दिए, लेकिन लंबे समय तक ये पाठ किए, तप किए, तो इसके परिणाम पर विचार कीजिए कि इकट्ठे 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और सब फर्स्ट क्लास। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि नारद जी के कूट वचन को अपने से समझ गए। नारद जी उनसे 10 बात बोले, उसमें एक बात बोले कि अरे पिता की आज्ञा समझे बिना कोई कैसे सृष्टि करेगा। प्रकट देखा जाए तो उनको स्पष्ट पिता की आज्ञा थी कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार की हो, लेकिन हरिवश से समझ गए कि ना, वास्तव में शास्त्र ही पिता है और वह प्रवृत्ति का उपदेश नहीं दे रहा है। शास्त्र का आप निचोड़ पढ़े तो उसमें तो निवृत्ति है, तो तुरंत निवृत्ति धर्म को स्वीकार कर लिए। उन फिर दक्ष 1,000 पुत्र उत्पन्न किया, लेकिन नारद जी उनसे आकर के एक बात कहे कि अरे छोटे भाई का कर्तव्य है कि बड़े भाई का अनुसरण करे, जो बड़े भाई का अनुसरण करता है उस भाई का जस बहुत बढ़ता है, वो प्रचेता फिर अपने बड़े भाई का अनुसरण किए, विरक्ति स्वीकार कर लिए, नहीं वो सबलास। अब तो दक्ष बहुत कुपित हुए और नारद जी को बहुत भर्त्सना किया है, गाली दिया है, लेकिन अब 60 पुत्रियों को जन्म। देखिए पुत्रियों को तो सन्यासी नहीं बनाएंगे ना, लेकिन वो सन्यासी बने या न बने, वो स्त्री हैं, लेकिन उनके महिमा को सुनिए। भगवान जब गजेंद्र मोक्ष के बाद गिनती कर रहे हैं कि जो हमारा स्मरण करेगा, सरोवर का स्मरण करेगा, हमारे अस्त्र का स्मरण करेगा, लिस्ट दे रहे हैं, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। उस लिस्ट में दक्ष के पुत्रियों का नाम है, वो स्त्री हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि दक्ष के पुत्रियों का जो चंद्रमा और कश्यप की पत्नियां हैं, धर्म की पत्नियां हैं, केवल स्मरण करेगा तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो तपस्या का परिणाम आया, महान पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए। वो बहुत लंबे समय तक तपस्या किए। वो तपस्या का महत्व निराश नहीं होना चाहिए। वास्तव में बड़े उपलब्धि के लिए लंबे समय तक साधना में लगे रहना होता है। कभी कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं, इतने दिन से जॉब कर रहे हैं कुछ है? अरे कितने हजार वर्ष से जॉब कर रहे हैं? देखिए फल को पकने में समय लगता है। बेल फल आप जानते हैं ना, पेट के लिए बड़ा गुणकारी है, लेकिन एक दिन में वो गुण नहीं आ जाता है। अभी फल छोटा छोटा आ गया होगा और धीरे धीरे वो जा करके तैयार होगा चैत वैशाख में, तब उसमें गुण आता है। तो उसी प्रकार खास करके जो प्रेमा भक्ति चाहते हैं, निर्भरा भक्ति चाहते हैं, सरस भक्ति चाहते हैं, तो जब लंबे समय तक साधना में रहते हैं तब जा करके रस की निष्पत्ति होती है। इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा वास्तव में श्रद्धा है तो व्यक्ति सफलता सफलता पर विचार नहीं करता, श्रद्धा में अपने साधना में लगे रहता है। उदाहरण दिया गया स्वर्ण लिप्सु का। कोई कोई व्यक्ति हैं कि नदी के तट पर सोना खोजते हैं, स्वर्ण रेखा में या कहीं, तो कभी कभी सोना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, लेकिन वे प्रयास नहीं छोड़ते हैं। किसी किसी दिन भर खोजते हैं, नहीं मिलता, लेकिन बंद नहीं करते हैं, दूसरे दिन आ करके और फिर खोजते हैं। तो वैसे भक्ति में व्यक्ति को अपने साधना में लगे रहना चाहिए। तो हम ये सब बात कह रहे हैं कि दक्ष हंस गुह स्त्रोत्र का पाठ बहुत दिन तक किए। स्त्रोत्र में एक श्लोक में वे कह रहे हैं, भगवान का निरूपण कर रहे हैं, तो कह के सर्वनामा च विश्वरूप। ये भगवान का सब नाम है। संसार में जितना आप नाम रूप देख रहे हैं सब भगवान का ही विश्व रूप है। तो अब कोई कह सकता है कि तब तो कोई किसी भी स्त्री का भजन कर रहा है, स्त्री की सेवा कर रहा है, या किसी के बच्चे की सेवा करे, अपने बच्चे की सेवा कर रहा है, तो भगवान की भक्ति कर रहा है ना। ये कह रहे हैं कि सर्व नामा सच विश्व रूप, भगवान का ही सब नाम है। तो अपने पत्नी का नाम बोल रहा है, बच्चे का नाम बोल रहा है, तो भगवान की भक्ति हो जाएगी। तब कह रहे हैं कि ना ना, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो इस श्लोक में कह रहे हैं यन निरुक्तम बचसा, अरे अपने वाणी से जो भी शब्द आप बोलिए, कोई भी शब्द डिक्शनरी से लीजिए, या धिया निरूपितम, या अपने ध्यान से आप निर्धारित कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं, या इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं, या मन से सोच रहे हैं, कोई मन से निर्णय संकल्प कर रहे हैं, बुद्धि से निर्णय ले रहे हैं, या वचन से कुछ स्थापित कर रहे हैं, नहीं बुद्धि से कुछ स्थापित कर रहे हैं, या वाणी से बोल रहे हैं, तो मा भूत स्वरूपम, जो भी आपके वाणी का विषय बन रहा है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसके विषय में सोच रहे हैं, जो निर्णय कर रहे हैं, जो संकल्प कर रहे हैं, वो भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान का रूप नहीं है। क्यों नहीं है तो कह रहे गुण रूपम ही तत्त्व। जो भी आपके वाणी का विषय बन रहा है वो तो प्रकृति का कार्य है, गुण का कार्य है। जो भी आप मन से सोच रहे हैं वो गुण का कार्य, आपका मन ही प्रकृति का कार्य है, तो उसका रिजल्ट भी प्रकृति का कार्य है, वो भगवान नहीं हो सकता। अरे भी तो जब है हम लोग जो सोचेंगे जो बोलेंगे जिसकी स्थापना करेंगे वो भगवान है ही नहीं है, तो भगवान की सत्ता कैसे माना जाए, कैसे भगवान की सिद्धि होगी। तो कहीं सभी गुणा पाए विसर्ग लक्षण, वह सृष्टि और प्रलय से भिन्न है। जो सृष्टि और प्रलय के पहले है और बाद में है वो भगवान है, या जो सृष्टि और प्रलय का नियामक है वो भगवान है। सृष्टि के अंतर्गत जो भी है वो भगवान नहीं हो सकता, और हम लोगों के वाणी के पहुंच तो सृष्टि के अंतर्गत ही, उसके बाहर नहीं जा सकता, तो इसलिए वो भगवान नहीं हो सकता। और इस विषय पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि लोग कल्पना करते हैं दरिद्र नारायण, अरे दरिद्र भी तो प्रकृति का कार्य, वो नारायण कैसे हो सकता है, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि दरिद्र में नारायण को देख सकते हैं, दरिद्र नारायण नहीं है, लेकिन दरिद्र में नारायण की पूजा करना यह अच्छा है। जो भी आवश्यकता मंद है और उसके कुछ आवश्यकता को पूरा करते हैं तो भगवान की वो आराधना है, वो यज्ञ इत्यादि से कहीं अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दरिद्र नारायण यह ठीक नहीं, दरिद्र में नारायण को देखना यह ठीक है। अच्छा एक और प्रश्न होगा कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो भगवान का नाम होगा ही, भगवान होंगे ही नहीं, तो फिर सलाह क्यों दिया जाता है, जप करो, अध्ययन करो, पाठ करो। हम लोग तो कोई शब्द ही बोलेंगे ना। सिद्धांत यह समझना चाहिए कि अपने इंद्रियों से हम जो बोल रहे हैं वो माया का कार्य है, लेकिन भगवान का नाम बोलना चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है, तो हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान कृपा करके खुद ही स्फुरित हो जाते हैं। ये सिद्धांत दिया गया है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह इंद्रिय, अपने इंद्रियों से हम भगवान के नाम को नहीं पकड़ सकते, लेकिन इच्छा करते हैं तो कृपा करके नाम हमारे जिह्वा पर स्फुरित होने लगता है। तो इसलिए कोई निराशा की बात नहीं है, भगवान सेंसिटिव है, हमारी इच्छा का महत्व है, हम इच्छा करते हैं तो भगवान हमारे इंद्रियों पर आ जाते हैं। इसी से सलाह दिया गया है कि तस्मात् भारत हे परीक्षित, सब प्रकार से भगवान ही श्रोतव्य हैं, उन्हीं को सुनना चाहिए, वही कीर्तितव्य हैं, वही स्मर्तव्य हैं, उन्हीं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जब हम इच्छा करते हैं तो दिव्य गुण शास्त्रों से हमारे कान तक आते हैं, उनका दिव्य रूप कृपा करके हमारे मन में उतार देते हैं। जब हम इच्छा करते हैं उनके नाम को ग्रहण करने का तो कृपा करके नाम हमारे जिह्वा पर स्फुरित हो जाता है। लेकिन अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हम अपने बल से ये सब कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा से होता है। और दक्ष लंबे समय तक साधना के परिणाम अच्छा हो, हम लोगों को भी स्थिरता से अपने साधना में लगे रहना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रश्न प्रसाद दोनों विकल्प है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।